ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। शरद पूर्णिमा के रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यहां व्रज में रासलीला रचाई थी। शरद ऋतु की पहली पूर्णिमा है। जितने भी ऋतुएं हैं, छह ऋतु होते हैं, उनमें से वसंत ऋतु और शरद ऋतु सबसे सुंदर और रमणीय माने जाते हैं। परंतु दोनों में यदि तुलना की जाए तो शरद ऋतु अधिक सुंदर मानी जाती है। और ऐसे सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में, जबकि मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, अनुकूल रहता है भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण यहां पर बांसुरी बजाते हैं, गोपियों को बुलाते हैं और रासलीला करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी वदन वैसे ये शरद ऋतु का सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक आभूषण है। प्राकृतिक सौंदर्य, तापमान की अनुकूलता, ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु शरद ऋतु की विशेषता ये है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण और भी मधुर ढंग से अपने बांसुरी को बजाते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 20वें अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी वृंदावन के वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और उसके बाद शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। और 21वां अध्याय फिर भगवान श्री कृष्ण की वेणु वदन का वर्णन है। फिर गोपियां जब वर्णन करती हैं इस बांसुरी वदन की, तो इसे गोपी या इसे वेणु गीत कहा जाता है। तो ये वेणु गीत भी शरद ऋतु में गा रहे थी गोपियां। तो इसलिए ये शरद ऋतु भगवान के मधुर से मधुर लीलाओं से आभूषित हो जाता है, इसलिए हम सबके लिए बहुत पूजनीय है, विशेष करके इस पूर्णिमा के रात्रि के दिन ये रासलीला हुई थी। वैसे भगवान श्री कृष्ण की वसंत ऋतु की भी रासलीला होती है, परंतु शरद ऋतु की जो रासलीला होती है वो अद्वितीय है। साथ साथ में कार्तिक महीना भी प्रारंभ हो रहा है, तो कार्तिक मास के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। वैसे आप सब तो जानते हैं कि चातुर्मास का ये अंतिम महीना है। वैसे चातुर्मास की गणना की जाती है आषाढ़ महीने के शुक्ल एकादशी से कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी तक। आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी को शयना एकादशी भी कहते हैं, और यहां कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी को उत्थान एकादशी कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे होते हैं इस समय। तो चातुर्मास के जो चार महीनों का की अवधि है उसमें भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, इसलिए शयना एकादशी जब भगवान सो जाते हैं और उत्थान एकादशी जबकि वो जाग जाते हैं। तो इस चातुर्मास के समय वैसे अधिकतर साधुगण जो होते हैं अपने भ्रमण को बंद करते हैं और किसी एक स्थान में रह के अपना साधन भजन अधिक करते हैं। और इसका अंतिम महीना जो है ये कार्तिक महीना है। वैसे चातुर्मास की गणना एकादशी से की जाती है जैसे हमने कहा, फिर भी कभी कभी पूर्णिमा से भी की जाती है, कोई लोग द्वादशी से करते हैं, ऐसे अलग अलग पद्धतियां होती हैं। हम लोग वैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विशेष करके पूर्णिमांत पद्धति स्वीकार करते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत हम ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करेंगे, क्योंकि इस विषय में अधिक चर्चा होती नहीं है, तो जानकारी के लिए थोड़ा अच्छा है। वैसे चंद्रमास और सौर्यमास दोनों होते हैं, परंतु चंद्रमास को प्राधान्य दिया जाता है। वैसे चांद की भूमिका हम सबके जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूतवारसात्मक, तो सोमदेव या चंद्रदेव के कारण ही सब्जियों में वनस्पतियों में रस आ जाता है। जो भी हमारे सब लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो सोमदेव के कारण होते हैं। तो सोमदेव का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक है, इसलिए चंद्रमास की गणना का महत्व होता है। अब पूर्णिमा के तिथि पर जिस नक्षत्र में चांद स्थित होता है तो उस महीने को उस नक्षत्र के पीछे नाम दिया जाता है। जैसे कि अब विशाखा नक्षत्र के पास जब चांद होता है पूर्णिमा की तिथि पर, तो उस महीने को फिर वैशाख कहा जाता है। विशाखा के पीछे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मासाना मार्गशीर्षो हम, कि महीनों में से मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। इस महीने को मार्गशीर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि चांद पूर्णिमा की तिथि पर मृगशीर्ष नाम के नक्षत्र के निकट होता है। तो इसलिए ये पूर्णांत पद्धति जो है महीनों की गणना के लिए ये बहुत उपयुक्त है, क्योंकि पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा में महीने का अंत होता है, फिर वहां नक्षत्र की गणना की जाती है, फिर अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। अर्थात प्रतिपात से, कृष्ण प्रतिपात से फिर नया महीना प्रारंभ होता है। तो हम लोग विशेष करके पूर्णिमांत पद्धति को स्वीकार करते हैं, और इसलिए हमारा कार्तिक जो है वो फिर आज से प्रारंभ होता है। हम व्रत का पालन करते हैं पूर्णिमा के बाद वाले दिन। तो खैर, आज शरद पूर्णिमा है और कार्तिक व्रत भी हम पालन करने वाले हैं। वैसे इस महीने में की तुलना अभी पूर्णिमा से तो हो ही रही है, कोई द्वादशी से तो कोई एकादशी से ऐसे करते हैं। वैसे दक्षिण भारत में अमावस्या अंत पद्धति भी स्वीकार करते हैं, परंतु पूर्णिमा पद्धति ही ठीक है, और विशेष करके क्योंकि हमारे संप्रदाय में इसको महत्व दिया जाता है, इसलिए हम लोग भी यहां करते हैं। आप देखेंगे वृंदावन में भी कई जगह अलग अलग दिनों से कार्तिक व्रत शुरू करते हैं, विशेष करके एकादशी के दिन से शुरू करते हैं। तो खैर, ये कार्तिक महीने क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र से संबंधित है, इसलिए नाम ऐसे आया है। जैसे मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशीर्ष नक्षत्र से है, वैशाख महीने का संबंध विशाखा नक्षत्र से है, तो वैसे ये कार्तिक महीने का संबंध कृत्तिका नक्षत्र से है। ये छह है नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के पास में आप देखेंगे आकाश में जब देखेंगे तो इस समय दिखाई पड़ेंगे। तो चांद वहां पूर्णिमा के समय इस महीने के अंत में होगा, आज नहीं आने वाले पूर्णिमा में, इसलिए फिर इसको कार्तिक कहा जाता है, कृत्तिका के पीछे, जो कृत्तिका से संबंधित है। शिवजी के पुत्र हैं स्कंद, स्कंद का और एक नाम है कार्तिकेय, क्योंकि ये कृत्तिका जो है ये धात्री बनी थी, इन्होंने पाला पोसा था स्कंद को, इसलिए स्कंद का नाम हुआ कार्तिकेय। तो खैर ये एक व्युत्पत्ति है कृत्तिका या कार्तिक के लिए। तो यहां इस कार्तिक महीने में कि बहुत पावन महीना माना जाता है हम सब के लिए। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं अपने चैतन्य चरितामृत में, सनातन शिक्षा में, कि जितने 12 महीने हैं उन सब के अलग अलग नाम हैं, जो कि भगवान के चतुर्भुज विष्णु रूप नामों से संबंधित हैं। जैसे कि ये 4 महीने विशेष करके होते हैं चातुर्मास के, श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, तो इनके भी नाम इस प्रकार से महाप्रभु बताते हैं, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। जैसे हम तिलक लगाते हैं शरीर के ऊपर, तो वैसे ही ये 12 महीनों का नाम के नाम जो हैं, ऐसे ही इन नामों पर आधारित होते हैं। वैसे चातुर्मास की गणना सौर मास से भी की जा सकती है, जैसे श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक के 4 महीने भी चातुर्मास कहलाते हैं, तो और एक तरीका है गणना करने का। तो खैर महाप्रभु बताते हैं फिर ये कार्तिक महीने का दूसरा नाम है दामोदर, क्योंकि इस महीने के अधिष्ठाता देव हैं दामोदर। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि ये 12 जो नाम हैं, इन 12 महीनों के जो विष्णु भगवान के नाम के ऊपर आधारित होते हैं, ये सब चतुर्भुज रूप हैं भगवान के। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु कहते हैं, आश्विन है पद्मनाभ, कार्तिकेय दामोदर, राधा दामोदर अन्य व्रजेंद्र कुमार। वो कहते हैं कि ये महीने का नाम तो दामोदर है कार्तिक महीने का, परंतु ये दामोदर जो हैं वो व्रजेंद्र कुमार दामोदर नहीं है, वो राधा दामोदर वाले दामोदर नहीं है, वो चतुर्भुज विष्णु रूप दामोदर है, स्पष्टीकरण करते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर भी क्योंकि इस महीने में माता यशोदा ने अपने प्रेम के कारण अपने पुत्र श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था, क्योंकि ये दामोदर लीला इस महीने में हुई थी, इसलिए हम इस महीने में, दामोदर महीने में, भगवान के इस दामोदर रूप की विशेष पूजा करते हैं, गुणगान करते हैं, दामोदराष्टकम आदि गाते हैं। ऐसे विधि है, पुराणों में बताया हुआ है कि दामोदराष्टकम विशेष करके हमें गाना चाहिए, और भगवान के दामोदर रूप की, जिसमें कि उनके उदर को माता यशोदा ने दाम से या रस्सी से बांध दिया था, इस विशेष रूप की हम पूजा करते हैं, गुणगान भी करते हैं। वैसे माता यशोदा ने केवल रस्सी से भगवान को नहीं बांधा था, भगवान किसी भी भौतिक वस्तु से या पद्धति से बांधे नहीं जा सकते, वो तो केवल शुद्ध प्रेम से ही बांधे जा सकते हैं। तो इस महीने में हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं माता यशोदा के चरणों में, श्री कृष्ण दामोदर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी ऐसी ही प्रेमा भक्ति हो, जिसके द्वारा हम भी श्री कृष्ण को प्रेम से बांध लें, हमारे हृदय में उनको बांध के रखें। भगवान केवल प्रेम से ऐसे खरीदे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहां ये दामोदर महीने का महत्व है, और जिस प्रकार से दामोदर भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत प्रिय होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उनका महीना, ये दामोदर महीना भी उनके भक्तों के लिए बहुत प्रिय होता है। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं। उनमें से एक अंग है ऊर्जादरो, ऊर्ज आदर, ऊर्ज व्रत का आदर करना, भगवान के अर्चा विग्रह का आदर किया जाता है, नमस्कार करके, प्रणाम करके, पूजा आदि करके, गुणगान करके, दर्शन करके, भगवान के अपने प्रसाद रूप को आदर दिया जाता है सेवन करके, भगवान के श्रीमद् भागवत रूप का आदर किया जाता है श्रवण करके, कीर्तन करके। तो भगवान के जो विविध रूप होते हैं जिनमें कि वो प्रकट होते हैं हम सब के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, उनको भिन्न भिन्न रूपों से आदर प्रदान किए जाते हैं। तो ये महीना जो है कार्तिक का, दामोदर महीना, ये भी भगवान दामोदर से अभिन्न होने के कारण इस महीने को भी हमें आदर प्रकट करना चाहिए। ऊर्ज आदर है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये एक भक्ति का नियम है, साधन भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस महीने को ऊर्ज भी कहते हैं, ऊर्ज व्रत। तो जिस व्रत का पालन इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसे ऊर्ज व्रत कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस व्रत का पालन हमें विशेष रूप से करना चाहिए, और विशेष करके वृंदावन में इस व्रत का पालन करने से अधिक लाभ मिलता है जब हम दामोदर रूप में भगवान का गुणगान करते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं, यथा दामोदर भक्त वत्सलो विदितो जनैहि तस्यायम तादृशो मासः स्वल्पम अप्युरु कारकः। वो कहते हैं कि यथा दामोदर भक्तवत्सल, जिस तरह से दामोदर जो कि भक्तवत्सल हैं, भक्तवत्सल के रूप में जाने जाते हैं अपने भक्तों में, तस्यायम तादृशो मासः, जिस तरह से भक्तों के लिए वो बहुत प्रिय हैं, ठीक उसी तरह से ये जो दामोदर महीना है उनका महीना है, ये भी भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। वैसे भगवान भक्तवत्सल है, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, आश्रय देती है, तो उसी तरह से भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनका जो महीना है दामोदर महीना, वो भी भक्तवत्सल है, वो भी भक्तों के ऊपर विशेष कृपा प्रदान करने वाला है। और वो कैसे, स्वल्पम अपि उरु कारकः, तो उरु मतलब बहुत ज्यादा, कारकः मतलब करने वाला, तो उरु कारकः ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि बहुत कम स्वीकार करके इसके बदले में बहुत ज्यादा प्रदान करते हैं। तो जब दामोदर महीने की बात होती है तो स्वल्पम अपि उरु कारकः का अर्थ ये है कि इस महीने में थोड़ी सी भी यदि हमने सेवा की भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, तो इसका जो परिणाम है वो हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगा, इसका लाभ बहुत ज्यादा, अनेक गुना ज्यादा मिल जाएगा। अन्य समय जब हम भगवान की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, लाभ तो होता ही है अवश्य, और वो भी शाश्वत लाभ है, फिर भी जब कार्तिक महीने में, दामोदर महीने में थोड़ी भी सेवा यदि हम करते हैं राधा कृष्ण की, तो इससे इतना लाभ मिलता है कि इसकी गणना हम नहीं कर सकते। बल्कि ये दामोदर महीना केवल बहाना ढूंढता है, ऐसे आचार्यों ने बताया है। बहाना क्या है कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो मेरे समय में थोड़ी भी सेवा करेगा, तो ऐसे नजर रखते हैं कि कौन है वो, थोड़ी सी भी सेवा हो तो उस सेवा को एक ऋण मान लेते हैं कि इस भक्त ने मेरे समय में अर्थात इस दामोदर महीने में सेवा की है, तो मैं इतना ऋणी हूं इस भक्त के प्रति कि मैं उसे इतना वरदान दूंगा, इतना लाभ प्रदान करूंगा कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस छोटी सी सेवा को, थोड़ी सी सेवा को एक बहाना लेकर वो बहुत ज्यादा भक्ति का लाभ प्रदान करते हैं भक्तों को। ये तात्पर्य है स्वल्पम अपि उरु कारकः शब्दों का। तो दामोदर महीना भगवान की तरह ही, बल्कि भगवान से अधिक कृपालु है, क्योंकि वो केवल बहाना देख रहे हैं। थोड़ी सी सेवा भी हो तो कितना लाभ हमें मिलता है। वैसे पद्म पुराण में ये बताया गया है, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी पाद ये बताया करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भोग और मुक्ति के जो वरदान हैं वो आसानी से दे देते हैं अपने भक्तों को। कोई उनके पास उपासक हैं जो कोई सकाम भाव से उनके पास आते हैं, धनम देही रूपम देही, तो भगवान आसानी से प्रदान कर देते हैं। यहां तक कि कोई मुक्ति भी चाहते हैं भगवान से तो मुक्ति भी आसानी से प्रदान कर देते हैं। परंतु भक्ति, प्रेमा भक्ति, उच्च सर्वोच्च कोटि की भक्ति जो है, शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो ऐसे आसानी से प्रदान नहीं करते हैं। ये बहुत ही विशेष लोगों को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति ही एकमात्र कार्य है या गुण है जो कि भगवान को पूरी तरह से आकर्षित कर सकती है, और भगवान विरला ही ऐसे किसी को ये कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि जब भक्त के हृदय में शुद्ध प्रेम होता है तो भगवान अपने आप को बेच डालते हैं, अपने उस भक्त के हवाले कर देते हैं अपने आप को, तो भगवान उस भक्त के नियंत्रण में आ जाते हैं, उस भक्त के एक कठपुतली बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान बड़े सावधानी से देखते हैं कि कृष्ण प्रेम देने के पहले मुझे बहुत सोचना चाहिए। वैसे भुक्ति मुक्ति प्रदान करने में इतना कुछ अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती है भगवान के लिए। वैसे भी कितने सारे लोग होते हैं जो भुक्ति मुक्ति चाहते हैं भगवान से, शुद्ध प्रेम चाहने वाले लोगों की संख्या तो बहुत कम है, और जब वो आते भी हैं तो भगवान बड़े हिचकिचा के सोच समझकर फिर प्रदान करते हैं, ये व्यक्ति वास्तव में योग्य है क्या? क्योंकि यदि मैंने यूं ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया तो इसके हवाले मुझे जाना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े सोच समझ के फिर ये देते हैं। परंतु ऐसे को यदि भक्त हो जो गंभीर भक्त न भी हो, गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहा हो, परंतु इस दामोदर महीने में, कार्तिक महीने में और विशेष करके व्रज भूमि में आके यदि वो साधन भक्ति के, शुद्ध भक्ति के अंगों का पालन करता है अच्छी तरह से, तो भगवान ऐसे भक्त को भी वैकुंठ की प्राप्ति या गोलोक की प्राप्ति करा देते हैं। जो व्यक्ति भले गंभीरता से भी भक्ति अपने साधारण जीवन में, दैनिक जीवन में न करता हो, परंतु उसने कार्तिक महीने के बारे में कुछ सुना है और खास करके वृंदावन के बारे में, और यहां आके वृंदावन में वो कार्तिक व्रत का पालन करता है, तो ऐसे बहुत लाभ होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए इस कार्तिक महीने में प्रथा है प्राचीन काल से कि लोग यहां आकर अपने कार्तिक व्रत को मनाते हैं। आज भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में देखा जाता है कि कितने सारे भक्त विशेष करके इस महीने में यहां पर आते हैं। यहां अब इस कमरे में बैठे हुए अधिकतर लोग बाहर से ही आए हैं। हम सब कार्तिक महीने का लाभ लेने के लिए यहां पर हम आए हैं। परंतु ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी सारी संस्था यहां वृंदावन में आ जाए तो फिर अन्य मंदिरों में कार्तिक कौन मनाएगा, फिर प्रचार कैसे होगा। तो दामोदर मास की ये कृपा है कि जहां भी हम रहें यदि उनका पालन करें, उस व्रत का पालन करें हम, तो हमें लाभ अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि जहां पे राधा कृष्ण की सेवा हो रही हो, उनके गुणों का गान हो रहा हो, तो वहां अवश्य वृंदावन है। वृंदावन अंततः एक चेतना की बात है, केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है। अवश्य वृंदावन के भौगोलिक सीमाओं के भीतर आने से लाभ तो होगा ही होगा अवश्य, परंतु यहां भौगोलिक वृंदावन में आने के बाद यदि हमारी चेतना सही नहीं रही तो उतना लाभ नहीं होगा। प्रभुपाद जी भी वृंदावन को छोड़कर चले गए शारीरिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से, यद्यपि अंतःकरण में तो वृंदावन को लेकर ही गए थे साथ में। और उन्होंने सारी दुनिया को सिखाया कि दामोदर महीने का महत्व क्या है। यदि प्रभुपाद जी नहीं जाते तो आज हम यहां दामोदर महीने को मनाने के लिए शायद ब्रज में न होते। इसलिए यह भी आवश्यक है कि हमारे संस्था में, जो कि एक प्रचार की संस्था है, अलग अलग केंद्रों में हमारे भक्त, थोड़े भक्तों को तो अवश्य रहना चाहिए जो वहां स्थानिक भक्तों को प्रचार कर सकें, उनके साथ में ही ऊर्जादरह ऊर्ज व्रत का पालन करें। तो खैर इस महीने में, इस स्थान में, ब्रजभूमि में इस ऊर्ज व्रत का पालन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे ऊर्जा आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, शक्ति। तो ऊर्ज का तात्पर्य है विशेष करके भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो है श्रीमती राधा रानी। दूसरे शब्दों में ऊर्ज व्रत के पालन करने का उद्देश्य है श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। क्योंकि ये दामोदर महीना है, ये श्रीमती राधा रानी के लिए भी बहुत प्रिय है। तो इस महीने में यदि हम राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, श्रीमती राधा रानी को भी प्रसन्न करने के लिए हम सेवा करें तो विशेष लाभ मिलता है। वैसे राधा रानी भी बहुत कुछ प्रदान कर सकती हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी के तिजोरी में जो सबसे श्रेष्ठ उपहार है, भेंट है, जो कि वो हमें दे सकती हैं, जिसके लिए कि वो बहुत आतुर हैं, वो है कृष्ण प्रेम। तो यदि इस ऊर्जा व्रत का पालन हमने अच्छे ढंग से किया तो अवश्य श्रीमती राधा रानी हम पर प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा प्राप्त करके हम शुद्ध कृष्ण प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने की वो अधिष्ठात्री देवता हैं या देवी हैं, इसलिए उनका नाम भी है कीर्तिका देवी और एक नाम है श्रीमती राधा रानी का। तो यहां पे जो व्यक्ति ऊर्ज व्रत का पालन करता है तो अवश्य श्रीमती राधा रानी की कृपा भी प्राप्त होती है, दामोदर की कृपा तो प्राप्त होती ही है। श्रीमती राधा रानी का संबंध इस महीने से इतना गहरा है, इसका और एक प्रमाण है स्वयं दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि कहते हैं। हम आज से प्रतिदिन इस गीत को गाने वाले हैं, नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियायाय। तो मैं नमन करता हूं श्रीमती राधा रानी के चरणों में, जो कि आपकी बहुत प्रिय हैं। तो ये राधा रानी का महीना है, श्री कृष्ण का भी महीना है, तो ऊर्ज व्रत का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता है वो ऐसे व्यक्ति के समान है जो कि किसी चिंतामणि को प्राप्त करता है और फिर तुरंत उसे फेंक देता है, उसका लाभ नहीं लेता। तो हम लोग कार्तिक महीने में हैं और विशेष करके वृंदावन में हैं, और यदि इसका लाभ हम लोग पूरी तरह से नहीं लेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे होगा मानो कि हमने बहुत मूल्यवान चीज फेंक दी हो। तो इस कार्तिक महीने में कितने सारे महत्वपूर्ण उत्सव हैं, जैसे कि गोवर्धन पूजा है, बहुलाष्टमी है, दीपावली है, गोपाष्टमी, भीष्म पंचक इत्यादि। और हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के लिए और एक विशेष दिन है कि श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन भी है। तो इस महीने में कितने सारे बड़े बड़े उत्सव हैं, तो ये सारा महीना ही एक विशेष उत्सव बन जाता है। वैसे तो हम कार्तिक मास के जो व्रत हैं उनका अधिक विस्तार में वर्णन नहीं करेंगे। कई बार शास्त्रों में ऐसे वर्णन जो होते हैं वो कर्मकांड की दृष्टि से बताए जाते हैं कि कार्तिक व्रत में ऐसे व्रत पालन करने से ये लाभ मिलेगा या वो लाभ मिलेगा। कृष्ण भक्तों के लिए, राधा कृष्ण के भक्तों के लिए तो कार्तिक व्रत का पालन केवल इसलिए किया जाता है कि हम शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, राधा कृष्ण के चरणों में तीव्र आसक्ति प्राप्त करें, और कोई भौतिक हेतु नहीं होता है हमारा। फिर भी शास्त्रों में तरह तरह के लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि प्रलोभन दिए जाते हैं। ये न कि न प्रकार न मनः कृष्ण निवेश, किसी न किसी तरह से वो लोग यदि इस दामोदर व्रत के या ऊर्ज व्रत का पालन करेंगे तो लाभ मिल ही जाएगा। आज नहीं तो कल वो भी शुद्ध कृष्ण प्रेमी हो ही जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं शास्त्रों में, परंतु जो गंभीर भक्त हैं वो इनकी परवाह नहीं करते हैं, वो तो सीधे अपने राधा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में ही ध्यान देते हैं। वैसे थोड़े बहुत नियम हैं जो कि हमें भी करने चाहिए, जिनका संक्षिप्त में हम वर्णन करेंगे। जैसे कि प्रातः काल में उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय आके फिर मंगल आरती में आना, भक्तों के संग में जप आदि करना, भागवत का श्रवण करना, ये तो भक्तों के दैनिक कार्य होते ही हैं। परंतु ऐसे हो सकता है कि हम में से कई भक्त मंदिरों में नहीं रहते हैं और हम मंगल आरती आदि नहीं कर सकते हैं, भक्तों का संग वैसे नहीं मिल पाता है। तो इस महीने में जब हम सब वृंदावन में आए हैं तो इसका पूरा पूरा लाभ हमें अवश्य कार्तिक महीने में उठाना चाहिए। भागवत का श्रवण, सुबह शाम श्रवण कीर्तन जितना हो सके, वो सबसे महत्वपूर्ण व्रत है वास्तव में कार्तिक महीने का। हमारे श्रवण कीर्तन को बढ़ाना, जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। ये तपस्या का महीना है, राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम तपस्या करते हैं। मुख्य तपस्या है हमारे समय अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन में लगाना। ये भी तपस्या इसलिए है कि मन यहां वहां भटकता है, मन कहता है कि ये भी महत्वपूर्ण कार्य है, वो भी महत्वपूर्ण कार्य है, इधर उधर हमें ले जाने के लिए मन बहुत कोशिश करता है। साथ साथ में ज्यादा श्रवण कीर्तन करते हैं तो एक स्थान में चुपचाप बैठना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। तो खैर, जितना श्रवण कीर्तन को हम बढ़ाएंगे इस महीने में विशेष करके, उतना अधिक लाभ मिलेगा। भगवान के चरणों में हमें भोग अर्पण करना चाहिए, भगवान को कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ अर्पण करना चाहिए भक्ति भाव से, तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। दूसरे शब्दों में जो भी हमारे रोज के दैनिक विधि विधान होते हैं, और भी कठोरता से और भी भक्ति भावना से इनका पालन हमें करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए विशेष करके इस महीने में। और एक सेवा है जिसका गुणगान बहुत किया गया है पुराणों में इस महीने के लिए, और वो है दीपदान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबसे निवेदन करेंगे कि अब आज तो पहला दिन है, ऐसा इस महीने में एक भी दिन नहीं आए जिसमें कि हम दीप अर्पण नहीं करेंगे। यदि हम कहीं जा भी रहे हो, रेलगाड़ी में भी जा रहे हो, तो साथ में हम लेकर जाएं हमारा दीप और भगवान की तस्वीर आदि कुछ लेकर जाएं, तो रेलगाड़ी में भी हम अर्पण करें। लेकिन चूंकि नहीं, विशेष करके इस महीने में दीप दान की सेवा करने में बहुत इसके महत्व के वर्णन विस्तार में हम नहीं सुनाने जाएंगे। तरह से भूरी भूरी प्रशंसा की है शास्त्रों में इस दीप दान की सेवा के लिए। वैसे शिखर दीप की सेवा भी की जाती है कि मंदिर के शिखर के ऊपर जो दीप लगाता है उसे फलाना फलाना लाभ मिल जाता है। जो पतंग आदि में दीप लगाकर भगवान की सेवा के लिए छोड़ देता है, आकाश दीप हो जाता है, उसके लिए इतने लाभ हो जाते हैं। और जो अपने हाथों से फिर भगवान को दीप अर्पण करते हैं उनको भी बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। कई लोग यमुना गंगा जी के जल में भी दीप छोड़ देते हैं। कितना एक सुंदर भक्तिमय वातावरण निर्माण हो जाता है दीप दान से। सैकड़ों भक्त जब इकट्ठे होकर भक्ति भाव अर्पण कर रहे होते हैं तो इससे और सुंदर दृश्य क्या हो सकता है। दीप दान के महत्व में वैसे शास्त्रों में बहुत घटनाएं हैं। पद्म पुराण में एक वर्णन है, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कार्तिक महिमा के बारे में, तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि इस संदर्भ में एक संवाद हुआ था जैमिनी ऋषि और वैशंपायन के बीच में, और एक चूहे की कहानी है, सत्य है। और हुआ ये कि एक बार, एक कार्तिक महीना था, एक चूहा जो है भगवान के सिंहासन पर चढ़ गया। राधा कृष्ण की मूर्तियां थीं, उनके सामने एक दीप जल रहा था। अब उस दीप को, वो दीप बुझने ही वाला था कि चूहा यहां पर आया। उसने सोचा कुछ खाद्य वस्तु है, तो वात को लेकर कुछ इधर उधर कर दिया तो दीप और भी ठीक से जलने लग गया। वैसे अनजाने में ये लाभ तो मिल गया इस चूहे को, चूहे की इच्छा नहीं थी कि वो दीप को और प्रज्वलित कर ले, परंतु अनजाने में ऐसे हो गया। और फिर चूहा डर के मारे फिर वहां से भाग गया। अचानक जो दीप प्रज्वलित हो गया तो वहां से डर के भाग के जब बाहर निकला तो वहां पे एक सांप था। तो सांप ने चूहे को देखा और चूहे को डस लिया और चूहे की मृत्यु हो गई। जैसे ही चूहे की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत हाजिर हो गए, परंतु वहां पर विष्णुदूत भी आ गए। और जैसे अजामिल के साथ किया था, उन्होंने विष्णु यमदूतों को रोक दिया कि नहीं, इसे नहीं ले जा सकते। तो फिर यमदूतों ने पूछा कि क्यों, फिर विष्णुदूतों ने बताया कि यद्यपि इसने अनजाने में की है सेवा, परंतु कार्तिक महीने में इसने सेवा की, भगवान को दीप दान किया, इसलिए हम इसे वैकुंठ ले जाने वाले हैं, इसलिए आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपनी दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी पाद भी चूहे की कथा बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, और कोई दूसरी पौराणिक कथा होगी जो सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि हुआ ये कि एक बार एक चूहा आया और भगवान के सिंहासन पर आया, देखा कि वहां पर एक दीप है, तो वहां पर वात के पास गया और अपने दांतों से कुछ काटने का या खाने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक वो वात जो है उसको दांतों में अटक गई। तो जैसे वात अटक गई दांतों के बीच में, निकल नहीं रही थी, तो वो घबरा गया, घबरा कर नाचने लगा ऊपर नीचे कि किसी न किसी तरह से ये वात निकल जाए मेरे मुंह से, क्योंकि वात अटकी हुई है इसका मतलब है आग है वात में, तो शरीर भी जल जाएगा और अभी जल भी गए थे, उसके बाल जो है मूछ जो है वो भी जल तो गए थे, और डर के मारे, दर्द के मारे ये उथल पुथल कर रहा था, ये चूहा नाच रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। किसी भी तरह से इस बात को निकाले, लेकिन बात निकले ही नहीं। और हुआ ये कि आग से उसका शरीर जल के भस्म हो गया, मर गया। परंतु भगवान विष्णु ने स्वीकार किया कि ये इस चूहे ने दीप दान किया, मुझे नृत्य किया क्योंकि उथल पुथल कर रहा था ना वो चूहा, तो भगवान ने इसे नृत्य मान लिया कि मेरे सामने कीर्तन में नृत्य किया इस चूहे ने, और दीप दान भी कर ली, कई बार अनेकों बार दीप घुमा लिया मेरे सामने, भले उसने अनजाने में किया होगा परंतु उसका लाभ तो मिल गया, तो उसे फिर वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो इन्हें हमें अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए, कई उदाहरणों में ये सत्य होते हैं, ये जो केवल दंत कथा नहीं है, जो पौराणिक कथाएं हैं, ये केवल काल्पनिक चीज नहीं है, ऐसी सत्य घटनाएं हैं। तो हमारे मन में प्रश्न हो सकता है, हम तो कितने सालों से दीप अर्पण किए जा रहे हैं और अभी तक जप में मन नहीं लगता, वैकुंठ की बात तो दूर है। परंतु हमें जानना चाहिए कि जो चूहे के साथ हुआ वो सही हुआ, सत्य है, हमारे साथ भी होगा परंतु सही समय पर होगा। यदि हम केवल करते रहें भक्ति भाव से, प्रति कार्तिक मास को हम ऐसे ही श्रद्धा से दीपदान करते रहें, श्रवण कीर्तन करते रहें, तो फिर हमें भी उसी गति की प्राप्ति हो सकती है और अवश्य होगी। तो इसलिए दीपदान ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और श्रवण कीर्तन दर्शन आदि के अलावा यदि एक महत्वपूर्ण सेवा बताई जाए कार्तिक महीने के लिए तो ये है दीपदान की सेवा। और हम में से कोई भक्त कोई न कोई व्रत ले सकते हैं, यदि किसी को कोई अधिक माला करनी है आज इस महीने में कर सकते हैं, किसी को कोई प्रिय खाद्य पदार्थ त्यागना है इस महीने के लिए त्याग सकते हैं। परंतु हमें याद रखना है कि हमें ऐसे कोई व्रत नहीं लेना चाहिए जिसका पालन शायद हम नहीं कर पाए। ये कोई कहेगा हम 64 माला करेंगे हर दिन इस महीने में, अच्छी बात है, हो सकती है तो बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा न हो कहें कि हम व्रत ले लें और फिर 2-4 दिन करें और फिर नहीं कर पाए, फिर छोड़ दें उसको आधे में, वो ठीक नहीं हो। तो जो भी हम व्रत लें ऐसा लें कि इसका पालन हम अच्छी तरह से पूरे महीने में हम कर पाए। वैसे शास्त्रों में बताया गया कि जिस प्रकार से प्रयाग की सेवा माघ में होती है, गंगा जी की सेवा वैशाख में होती है, तो मथुरा मंडल की सेवा, व्रजभूमि की सेवा वो विशेष करके कार्तिक में होती है। वैसे और बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं कार्तिक के बारे में, कार्तिक की महिमा के बारे में, परंतु कार्तिक की विशेष एक सेवा यह भी है कि राधा कृष्ण के को अर्पण की हुआ भोग जो प्रसाद है उसे सेवन करना। तो अब प्रसाद का समय हो चुका है, इसलिए कार्तिक में जो पहले प्रसाद का सेवन है उसके लिए हम अभी समय देते हैं, तो कथा यहीं विराम करते हैं। आशा करते हैं कि सबकी कार्तिक का सबका कार्तिक व्रत जो है ऊर्जा व्रत बहुत सुचारू रूप से भक्ति भाव से बीत जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हाँ, एक बात भी बताया गया है पुराणों में कि कार्तिक में प्रदक्षिणा परिक्रमा आदि का लाभ तो है ही, परंतु प्रसाद लेते समय बोलना नहीं चाहिए। इस कार्तिक महीने में यदि प्रसाद लेते लेते कोई व्यक्ति चुप रहेगा तो उसे बहुत लाभ मिलेगा। वैसे देखा जाता है कि जहां भी प्रसाद का वितरण होता है और साधारण अवस्था में भी बहुत बातचीत होती रहती है, तो कार्तिक महीने में कम से कम हम प्रयास करें कि प्रसाद पाते समय थोड़ी शांति से पाएं। और जहां तक हो सके जो प्रसाद का वितरण भी कर रहे हों इशारे से ही बस काम चलाएं। वास्तव में इशारा काफी होता है, तो इशारे से काम चलाएं ताकि बड़े अनुकूल या सुचारू भाव से रूप से प्रसाद का सेवन भी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री कार्तिक मास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।